casa do seu olho profissional, a gente vai ficar com a Maria. E o que ela falou um pouco dela com o nosso canal dela. Mas eu vou lá e a gente vai ficar com a Maria. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر بندے کو چاہیے.
Everyone is in need of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah tabaraka wa ta'ala ke paas do cheezein hain, rehmat aur azab.
Allah subhanahu wa ta'ala has two things, mercy and punishment.
Rehmat jab milti hai, jab bande ko Allah ta'ala maaf kare aur rehm ka faisla kare.
And how does someone gain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? When Allah subhanahu wa ta'ala forgives them and makes the intention to make, you know, khair for them.
اور سزا کب ملتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کا فیصلہ کریں, اور سزا کا فیصلہ جب کرتے ہیں جب اس کو معاف نہ کریں.
And when does Allah subhanahu wa ta'ala punish people? When he decides not to forgive them.
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العظیم.
Allah subhanahu wa ta'ala said, he's making an announcement. The old prophet sallallahu alaihi wa sallam, you tell my slaves that my mercy encompasses everything, but my punishment is also very strict.
عام طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس لیے لازماً رحم کرے گا.
Normally when we talk about Allah subhanahu wa ta'ala, we say Allah subhanahu wa ta'ala loves us more than 70 mothers. So we sometimes think that definitely Allah is going to be kind to us.
اس کا جواب ہے اصل میں میں صرف سزا رحم کرتا ہوں ویسی بات نہیں.
But there is a response to that. Allah subhanahu wa ta'ala is not only merciful.
بلکہ دونوں صورتیں بتا دی کہ میں رحم بھی کرتا ہوں لیکن سزا بھی دیتا ہوں.
But he tells us that there's two situations. That yes, he's merciful, but he also punishes.
یعنی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ پاک کو ہے, تو ماں میں تو اگر محبت ہوتی ہے یا باپ میں محبت ہوتی ہے تو وہ رحم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اگر اللہ پاک رحم کرنے پہ مجبور ہوگا تو وہ اللہ نہیں رہے گا, کیونکہ اللہ مجبور نہیں ہوتا کسی بھی چیز.
And this condition that we put that Allah subhanahu wa ta'ala loves us more than 70 mothers, yes, definitely that is there. And that love of the children in the mother is there because it mandates, it's necessary for the mother to love the children. But you cannot mandate anything to Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you did that, Allah subhanahu wa ta'ala will not have that quality or free from any conditions. Because Allah is pure and Allah is free from any conditions.
اثر جو ہے یہ دوسری چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اثر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے, کیونکہ اللہ پاک پر کوئی چیز جو ہے نا ڈومینیٹ نہیں کرتی, ان پر کوئی پریشر نہیں پڑ سکتا.
Influence is gained from outside. Something from the outside influences somebody else. But Allah subhanahu wa ta'ala is pure from any sort of influence.
اس لیے جب بھی ایسے لفظ بولے جاتے ہیں جس میں انسانوں میں جب وہ بولے جاتے ہیں تو اس سے اثر کے معنی پیدا ہوتے ہیں, اللہ پاک کے لیے جب بولے جائیں گے تو وہ اثر سے ہٹا کے لینے پڑتے ہیں.
That's why when we give these examples of somebody that's influenced by somebody else, we cannot apply that example to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala is pure from any influence.
جیسے غصہ جب انسانوں کو آتا ہے, اس غصے میں بدلہ لینے کا یا سزا دینے کا جو جوش آتا ہے, یہ جوش غصے کا ایک اثر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب غصے کا لفظ بولا جائے گا یا ناراضگی کا لفظ بولا جائے گا تو یہ اثر سے ہٹا کے بولنا پڑے گا آپ کو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ عائب دار ہو جاتے ہیں.
For example,
سبحان نہیں رہتے.
For example, the quality of anger. Normally when we attribute anger to somebody here in this world, we say he's doing it because he doesn't like somebody or he wants to express his frustration at somebody. But we can't say that to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala is pure from any influence, positive or negative. Because if we did that, that would be a deficiency in Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is pure from any deficiency.
جب کہیں گے کہ اللہ پاک غصہ کرتا ہے, اللہ پاک کو غصہ آ گیا, اللہ پاک نے اللہ ناراض ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو غرض ہے کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جب آپ کسی پہ غصہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں, لہذا وہ صرف سزا دیتے ہیں, متاثر نہیں ہوتے.
So when we say that Allah subhanahu wa ta'ala is angry, Now we don't say that no, he has been influenced by someone's actions and that's why he's punishing. No, Allah is pure from any influence. But we, how do we say, then why do we say he's enemy? Because he is punishing. So that action of punishment is an expression of his anger, but that's free from an influence from any other.
इसलिए 70 माहों से नहीं अगर 70,000 माहों से ज्यादा भी मोहब्बत फरमाएंगे तो भी उनको सजा देने के लिए कोई चीज प्रेशर करने वाली नहीं है कि भाई तुम इसको सजा मत दो.
That's why 70 is just a number. Even if we said, you know, 70 mothers, for the even 70,000 mothers, you know, that's just a number. Allah subhanahu wa ta'ala is free from any influence from any outside source.
इसलिए जब किसी पर रहम करते हैं तो इरादे से फरमाते हैं, जब किसी पर नाराज होते हैं तो इरादे से फरमाते हैं.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala blesses somebody, he's merciful to somebody, he's doing that out of his own intention. And when Allah is punishing somebody, he's doing that out of his own intention, out of his own will, free from any influence.
किसी को धोखा ना हो इस वजह से अल्लाह पाक ने दोनों प्लेस बता दिए. मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत ही माफ करता हूँ, रहम करता हूँ, और ये भी बता दो कि एक प्लेस मेरा और है, वो ये कि मेरी सजा बहुत ही तकलीफ देने वाली होती.
That's why we shouldn't be deceived that Allah SWT is only merciful. No, so Allah SWT in that ayat is saying, yes, I am merciful and my mercy is great, but I also punish people.
अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सजा देने के और अपने रहम करने के उसूल बनाए.
So Allah SWT has certain principles, certain rules, how to, when to express His mercy and love and when to express His anger.
उन उसूल को कभी अल्लाह पे प्रेशर नहीं है कि वो उसूल चुके बना दिए, लिहाजा उनको ऐसे करना होगा. लेकिन उन्होंने उसकी आदत बना ली और उन्होंने बता दिया कि मैं इस उसूल के मुआफिक करूंगा, तो उन पर कोई प्रेशर तो नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी यही है, उसको सुन्नतुल्लाह कहते हैं.
And even these principles and these rules are not anything that are incumbent upon Allah subhanahu wa ta'ala to follow. He has just set certain trends and he's not bound to follow these trends. So if you do this, I will do this, but he's not bound by any rule or principle to do something.
Magar aadat unhone iski bana li hai, usko sunnatullah kehte hain.
But he has made this trend, it's called the sunnat of Allah, the habit of Allah subhanahu wa ta'ala.
Aur Allah ne farmaya ki main apni sunnat ko nahi badalta.
And Allah subhanahu wa ta'ala has made the rule that I do not change my habit.
Lan tajid li sunnatillahi tabdila.
And then he said in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala will never change his habit.
रहम कब करेंगे वो, रहमत कब देंगे, उसके उन्होंने असबाब बनाए.
So when will Allah subhanahu wa ta'ala be merciful? He set certain means.
सजा कब देंगे, उसके उन्होंने असबाब बनाए.
And when he will punish people, he has set certain means.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रहमत के असबाब मांगे हैं अल्लाह पाक से.
That's why Nabi sallallahu alaihi wasallam asked for the means of rahmat from Allah subhanahu wa ta'ala.
रहमत भी मांगे हैं डायरेक्ट.
He asked directly mercy.
और असबाब भी मांगे हैं.
And also the means for mercy.
मशहूर अब्दुल्लाह सल्लम की दुआ है, हम सब पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मुजीबाती रहमती.
That's a very famous dua that Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Oh Allah, I ask you for the means and the ways I can gain from your mercy.
मुजीबात माने असबाब ही है यहां पर.
The means, the sababs.
क्योंकि वो सबब वाजिब करता है, इस वजह से उसको मुजीबात कहते हैं.
Because through the means Allah subhanahu wa ta'ala will turn his attention toward us.
तो अब ये जानना होता है ईमान वालों को, दीनदारों को, कि वो मुजीबात रहमत क्या है.
So that's why it's incumbent upon us to learn and to find out what are these means through which Allah will become merciful upon us.
Quran Pak mein bahut jagahon par ye baatein hain aur ahadees mubarak mein bhi hain.
And we find many examples in the Quran and Hadith.
Ek jagah yaad aayi mujhe, uska main zikr karta hu aapse.
And one he just remembered, inshallah, he mentioned to us.
Hazrat Musa alaihi salam ne apne liye aur apne manne walon ke liye dua mangi thi.
Musa alaihi salam made a dua for himself and those who followed him.
Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk.
That he made the dua that decree for us in this world good things and in the afterlife.
Us mauke par bhi Allah ne yahi farmaya ki qala adabi usubi bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay.
And in response to that,
hasana se murad rahmat hi thi.
And in response to that dua, Allah subhanahu wa ta'ala made the same response that yes, I will give the rahmat, my mercy to whoever I like, but my punishment is always there, that if I want to, I can punish too.
فَسَأَكْتُبُهَا مَنْ ضَرُورَ أَبْنِي رَحْمَةً دُونَا مَگر ان لوگوں کو دوں گا جو بعد میں ذکر کر رہا ہوں.
And then he said that yes, I will definitely turn my attention and turn my mercy towards them, except for those who follow these conditions.
تو گویا ان موجبات کو بیان فرمایا اللہ نے.
So then he gives this list, what are these means?
فرمایا ایک وہ جو تقوی اختیار کریں گے.
He who embodies تقوی.
جو بچیں گے.
Who fears.
किस चीज से बचेंगे?
What are they fearing from? What are they protecting themselves from?
अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों से बचेंगे तो वही है ना
टू स्टे अवे फ्रॉम दोस थिंग्स व्हिच डिसप्लीज अल्लाह सुब्हानहू व
तआला गुनाहों से बचेंगे
मीनिंग सिंस
तो अल्लाह पाक की रहमत देने का पहला उसूल गुनाहों से बचना है
सो द फर्स्ट रूल टू गेन द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज स्टे अवे फ्रॉम सिंस
इसीलिए गुनाह से बचना ज्यादा अहम होता है नेकी करने के मुकाबले में
दैट्स व्हाई इट इज more important to stay away from sins rather than to do good deeds
hum samajhte hain ki agar kuch amal nek amal zyada kar lenge to kaam chal jayega nahi agar bure amal se bach ke karenge to wo thode bhi kaam aa jayenge lekin bure amal ke sath mein nek amal muqabla karna bahut mushkil hai kyunki wo uska fasad bahut bada hota hai
sometimes you have this misconception that I'm going to do a lot of good deeds and these good deeds will be a means for my salvation but no that's a misconception because if you do good deeds while staying away from sins yes even those few good deeds will be enough but if you do good deeds and also doing sins the effect of those sins overpower the effect of those good deeds
ek sahabi ne hazur sallallahu alaihi wasallam se pucha ke man a'budun nas
one sahabi asked nabi sallallahu alaihi wasallam who is the most person who worships allah the most
to aap sallallahu alaihi wasallam ne bahut amal nahi bataye
he didn't give him some actions some worship
jo zyada tilawat kare jo zyada tasbih padhe jo zyada roze rakhe jo zyada nafil kare jo zyada sadqa kare ye nahi farmaya
he didn't say
is mauke par nahi farmaya
at this point he didn't say he who worships allah he who prays allah does zikr allah who reads quran allah you know who fasts allah no at this point no
aapne farmaya ittaqil maharim takun a'badan nas haram se bach sabse bada aabid ho jayega
he said if you stay away from sins you are the person who worships allah the most
उम्मत में जिस चीज की मेहनत करनी है मुझे अपने आप पर और अपने खानदान वालों पर आपको सबको पूरी उम्मत को वो ये है कि ये उम्मत गुनाहों से बचने वाली हो जाए
सो द एफर्ट दैट वी नीड टू मेक ऑन आवरसेल्व्स एंड ऑन द उम्मत इज हाउ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन स्टे अवे फ्रॉम सिंस
क्योंकि गलती जो होती है वो बहुत से अच्छाइयों पे पानी फेंक देती है
बिकॉज़ वन बैड डीड कैन वॉश अवे मेनी गुड डीड्स
एक साहब की शादी थी उन्होंने शेरवानी सिलाई
वन पर्सन वाज गेटिंग मैरिड सो ही हैड ए शेरवानी मेड फॉर हिम टेलर
शादी का दिन आ गया मगर शेरवानी तैयार नहीं
थी इट्स द डे ऑफ द वेडिंग बट द शेरवानी वाज ऑलरेडी
वो दर्जे के पास गए कि यार आज मेरी शादी है तो अभी तक शेरवानी नहीं बनाया मेरी
सो ही वेंट टू द टेलर सो लुक सो इट्स माय वेडिंग नाइट एंड यू नो द शेरवानी इज ऑलरेडी
उसने कहा कि बस बस बिल्कुल रेडी हो गए कोई ऐसी बात नहीं है
ही सेड
बस ये कि वो लेके आया अंदर से उसके बाद सब चीज बनी हुई है उसकी एक आस्तीन बनी हुई नहीं
He said everything is ready, it's just one sleeve is not ready.
सब कलप बन गया काजे बन गए गुंडियां ढक गई ये हो गया अंदर का अस्तर भी लग गया सब हो गया उन्होंने बोला एक चीज नहीं है तो क्या होता काम चला लो शादी कर लो बाद में देखेंगे
So he said don't worry about it, it's just one sleeve, don't worry about it, just go to the wedding and it's okay, make do without one sleeve.
तो जो काम किया हुआ है वो 80% से ज्यादा है शेरवानी आस्तीन भी बनी हुई है खाली जुड़ी भी नहीं हो
So majority of the work is done 80% of the work on that sherwani is done but that 20% is a an aib in that whole effort
dulhe ne jo kiya hoga mujhe aapko bolne ki zarurat nahi
so what did the groom do and there's no need for me to tell you
kyunki aap jo karenge wo wahi karega
because he's going to do whatever you would have done
क्योंकि जो उसने किया है वो कंसीडर नहीं होगा जो नहीं किया है वो देखा जाएगा
Because we don't look at what he did the 80% part of what he did we look at what he didn't do the 20% that he didn't do
यकीनन वो भी देखा ही जाएगा जो दूसरा उसने किया है लेकिन वो ना करना उस ना करने ने उस चीज पूरी चीज को जाया कर दिया
Yes definitely we look at the 80% but that 20% deficiency ruins all the effort of that 80%
इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले डराने वाले बने
That's why Nabi sallallahu alaihi wasallam was first His first effort was to scare people.
पहले डराने वाले कैसे बने? या अय्युल मुद्दकिर कुम फअंदिर.
What does that mean? That the first hukum, the first commandment given to Nabi sallallahu alaihi wasallam is that, oh, you who clothed in the blanket, stand up and warn people.
मुतवज्जे करने के लिए लोगों को तरगीब दी जाएगी अलग बात है लेकिन ये कि असल चीज ये है कि देखो अगर गड़बड़ रह गई तो तुम जाय हो जाओ
Yes, in order to encourage people, you can tell them about the fadail and the good things, but actuality is to shake people by fearing them
isliye farmaya fasaqtu buhan illadina ye allah taala musa alai salam ko farma rahe lekin musa alai salam ko bolne se humko kya milega aapko agli ayaton mein pata chalega
so allah subhanahu is giving in this ayat he's telling musa alai salam but what from musa alai salam what are we going to get he's telling in the next ayat
kyunki allah tbarak wa taala ki ek bahut si aadaton mein se ek aadat aur hai aur hum insano ke andar allah ne rakhi hai wo baat ki jisse aapko jitni zyada mohabbat hai उसको डायरेक्ट बोलने के मुकाबले में इनडायरेक्ट ज्यादा बोलना पसंद करते हैं.
And this is one of the habits of Allah subhanahu wa ta'ala we find in the style of the Quran, is that he who you love the most, rather than tell them directly, it's more effective to tell them indirectly.
किसी का बच्चा अपने बाप को बाइक दिलाने की जिद कर रहा है.
Somebody, kid is begging his father to get him a bike.
वो बाइक मोटर वाली लंबी वाली.
अच्छा अच्छा मोटरसाइकिल.
हाँ. क्योंकि वो डेंजर ज्यादा है ना.
Because that's more dangerous rather than a bicycle.
वो नौजवान बच्चा बड़ा बच्चा वो छोटी साइकिल को तो नहीं मांगेगा, वो तो बड़ी को ही
मांगेगा. Youngster is not going to ask for bicycles, ask for motorbike.
आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के उसमें रिस्क है.
But the parent is thinking, no, we don't want that because it's dangerous. And today, you're looking at today's environment here in this country, you think, oh, this is the habit of gangsters. And no father would want their child to be associated in any way with gangs.
क्योंकि उस एनवायरनमेंट में उस माहौल में जाने के असरात ले सकता है ये.
Because he will get, he'll be influenced by that environment.
तो आप नहीं चाह रहे उसको दिलाएं.
So the father doesn't want to give his son a motorcycle.
और वो जिद कर रहा है.
But the youngster is saying no, I definitely want it.
इस असना में कोई हादसा पेश आ जाए.
So something happens, there's an accident.
किसी का नुकसान हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, गिर के साइकिल मोटर.
So somebody had a motorcycle accident.
तो अब खाने की जगह पे बैठा हुआ है बाप.
So they're both sitting and they're eating.
तो करेगा क्या वो?
So what's he going to say?
फौरन ये अपने काम में रहेगा बाप.
So the father is going to be doing, you know, his own thing.
वो ये बोलेगा कि इसको ये बोलने का बहुत अच्छा मौका है.
He's going to think this is the best time for me to warn him.
तो कहेगा कि देखा साइकिल मोटर कितनी डेंजर चीज है, उसको एक्सीडेंट हो गया.
He said, don't you see, you know, that person had an accident, and look, he lost his life. He broke his leg and he's missing a whole semester of school and he's just bedridden. And so, oh, he was crying so loud, the whole hospital was, you could hear his screams. He's not telling his kid directly. He's not telling the son directly, but he wants him to hear to learn the lesson.
इसको फारसी में कहते हैं गुफ्तायत दर हदीसे दीगरा, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना.
This is a Farsi saying, is that to shoot a gun from somebody's shoulder.
तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहि सलाम को एक बात बोल रहे हैं.
So Allah SWT here is telling Musa alayhi salam.
और वो कुरान पाक में है.
In the Quran.
समझ जाओ आप ये क्या रूप है बात का.
So what is happening?
तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं रहमत दूंगा, लेकिन उसके मुजीबात में से एक ये है कि उन लोगों को दूंगा जो तक्वा इख्तियार करेंगे.
He said, yes, I will give you my mercy, but part of the condition is that you have to be those who take on taqwa.
तो जैसे रहमत मिलने का सबब तक्वा है, तक्वा मिलने के कुछ असबाब है.
So because taqwa is a means of getting rahmat, so what are the means for taqwa?
जैसे आपके पेट भरने का सबब रोटी है, रोटी मिलने का कुछ सबब है.
This is filling your stomach, you get from bread. So how do you get bread?
तो अब ब्रेड मिलने का जो सबब है, वो सबब का एक सबब है कि रोटी मिलेगी पैसे से, पैसा कैसे मिलेगा?
So in order to get bread, it's a sub means. So you get bread from money, and how to get money? You get bread, and bread you get, you know, fill your stomach.
पैसा मिलने का सबब जॉब है.
So how do you get money? Work.
मगर जॉब मिलने का एक सबब है.
So how do you get a job?
और वो बहुत दूर से चलता है.
And that goes way further.
वो किंडरगार्टन से चलता है.
They start from kindergarten.
और बहुत दूर तक जाता है.
And goes, you know, long way.
मतलब सबब एक चैन होती है पूरी वो.
So there's a whole chain of means to get to a certain goal.
परमा एक तो ये है कि उनमें तक्वा चाहिए.
So number one, they should have तक्वा.
और दूसरी बात यह है कि वयूतुना ज़कात अदा करने वाला मिजाज उनका होना.
And number two, they should have the mizaj, the inclination to give money in the path of Allah.
लफ्ज़ ज़कात में आमतौर पर मनी शामिल होती है, लेकिन बाज़ जगहों पे नहीं भी होती है.
Normally in the word zakat, money is understood, but sometimes it's not.
इसी वजह से कद अफलह मन तज़क्का, उसका भी मादा यही होता है.
That's why another part of the Quran, that he who succeeds, who purifies himself.
तो खुद ज़कात को भी ज़कात इसीलिए करते हैं कि वो माल को पाक करता है.
That's why we call zakat a purification, because it purifies our wealth.
और फिर ये है कि हमारी जो बातें हैं उन पर उनका कामिल यकीन होना.
And
number
three, those who believe in in our signs, in our words of Allah.
उसके बाद एक और बात फरमा दी.
Then he says something else.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. जो नबी उम्मी की इत्तेबा करेंगे उनको मिलेगा.
And those who follow the unlettered prophet.
तकवा भी हो, ज़कात अदा करने वाले भी हो, हमारी बातों पर यकीन भी हो और हमारे नबी की इत्तेबा भी करने वाले हो.
So these four things: taqwa, they follow, the zakah, and they follow. And the last thing, they follow the unlettered prophet.
अब अजीब बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रहमत उनको दूंगा जो नबी है उम्मी की इत्तेबा करे. नबी से मुराद यहाँ पे मूसा नहीं है.
So even though he's addressing Musa alaihissalam, but it's strange that because he's not referring to Musa alaihissalam in this, you know, in this ayah.
क्यों इस बात कि मूसा अलैहिस्सलाम की तो इत्तेबा उनकी उम्मत के लिए ठीक थी, लेकिन उनको अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम को उनके तवसो से उनकी उम्मत को ये बता रहे हैं कि असल इत्तेबा तो मुझे नबी उम्मी की करवानी है, हजरत मूसा की उम्मत से भी, ईसा की उम्मत से भी, पूरी दुनिया की इंसानियत से.
And he's giving a hint that the actual ittiba, the actual following we want you to do is to follow the unlettered prophet, the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he's telling Musa alayhi salam is obviously the Bani Israel, the follower of Musa alayhi salam, they're going to follow Musa alayhi salam. But for them is they also have to follow the commandments of Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Because दूसरे अंबिया भी असल में हुजूर की इत्तेबा में ही चले सोए.
Because all the other prophets also have to follow Nabi sallallahu alaihi wasallam.
आप sallallahu alaihi wasallam के कमालात, आप sallallahu alaihi wasallam के दो वजूद हैं.
There's two
आप दो, हाँ दो फायदा, दो पैदाइशें हैं आपकी, दो मिलाद हैं आपकी.
There's two births of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
एक हुजूर sallallahu alaihi wasallam का वजूद है, मिलाद नूरी है, और एक आपका मिलाद जसदी है.
There's one, he was born physically on this planet, and the other is born, with nur, with light.
वो जो नूर है आप sallallahu alaihi wasallam का, वो सबसे पहले है.
And the light of Nabi sallallahu alaihi wasallam came first.
इसीलिए हुजूर ने फरमाया कुंतु नबियन व आदम बैन अल माई व तीन, मैं नबी जब से हूं जबकि आदम मिट्टी पानी के बीच में थे.
That's when Nabi sallallahu alaihi wasallam said, I was a prophet when Adam alaihi salam was between dirt and water, when he was mud.
इसका ये मतलब नहीं कि लौह महफूज में मेरी नबूवत जब से है.
It's not that, you know, he was a nabi also in lauh mehfooz.
लौह महफूज में तो सबकी नबूवत भी जब से है.
Because everyone has नबूवत in lauh mehfooz.
सब कुछ भी पहले से
है. Everything is there in lauh mehfooz.
इसका मतलब कुछ और लिखा उलमा ने.
The ulama explained this in a different way.
क्यों इस वास्ते कि अल्लाह पाक ने जब कायनात बनाने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो नूरे नबूवत, नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ही है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
इसलिए आप अव्वल हैं पूरी मखलूक में भी.
दैट्स व्हाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फर्स्ट ऑफ ऑल मखलूक्स.
और आखिर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअसद के इत्तबार से.
एंड ही इज लास्ट because of his, he was the last prophet sent to this planet.
Aur bade hain awwal ke bhi aakhir ke bhi.
And he is the greatest in the beginning and the last.
Ana sayyidul awwalin wal akhirin, khud huzur ne farmaya ana sayyidul wuldi adam.
The Nabi sallallahu alaihi wasallam, I am the best of the all those who born in all of mankind.
जैसे मुझे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया, वैसे सियादत भी मुझे अव्वलीन और आखिरीन की दी गई.
This is, I have been given the knowledge of the first and the last. Similarly, I have been given the honor of being the best of the first and the last.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी, वो ये है कि अपनी शान बगाड़ने की आदत नहीं थी.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had the habit of not promoting himself.
इंतहाई मुतवाज़े थे आप.
Was very humble.
कोई आदमी आपके साथ, आपके आगे चल रहा हो तो आपको गवारा नहीं होता था.
Nobody, you know, he wouldn't like anybody to walk in front of him.
हालांकि सहाबा अदब की वजह से पीछे होते रहते थे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे करते रहते थे.
Even though the sahaba kiram would want to walk behind him, but he would make them go in front of him.
आप बहुत मुतवाज़े थे.
He was very humble.
इसलिए इसका कोई मौका नहीं है कि आप अपनी शान के लिए बताएं.
That's why this is not the time for Nabi sallallahu alaihi wasallam to promote himself and talk about.
आपको तारीफ करने की आदत नहीं थी.
He wasn't used to, you know, promoting himself and saying how great he was.
आपकी शान क्या, आपकी हैसियत क्या है, उसके तारुफ में आपने फरमाया कि मैं सारे औलादे आदम का सरदार हूँ और मैं अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया हूं.
That's why Nabi sallallahu alaihi wasallam said, I am the best of all of mankind, and I have been given the knowledge of the first and the last.
कई लोग ये ना समझ लें कि 1400 साल पहले आपने जो बातें बताई अब ये 1500 साल के बाद वो भी अमेरिका में आपकी बातें कहाँ चलेंगी आप फरमाया कि तुम्हारा जो इल्म है वो सब मेरा ही है जो तुमको मिल रहा है
We shouldn't think that, oh, now it's 1400 years after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, you know, well, what's going to last? No, what we have today is from the knowledge of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
चाहे वो साइंस का हो, मादियात का हो, किसी भी चीज का हो.
Whether it's science or material knowledge, whatever it is, it's from the ilm of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
दुनिया के अंदर के सारे खजाने जो निकल रहे हैं, इंसान निकाल रहे हैं, हुजूर ने फरमाया कि इसकी चाबी मुझे दी गई है, मैं उम्मत को देके जा रहा हूँ.
He said, all the treasures and minerals that we have inside the earth, he said, I have been given the keys to all these treasures.
وہ تو مفاتيح خزائن الارض حدیث شریف ہے زمین کے خزانوں کی چابیاں میں دے دیا گیا ہوں.
He said, I have been given the keys to the treasures of this earth.
اگر اس سے پہلے کسی کو دی گئی ہوتی تو ان کی امت نکال چکی ہوتی ہے ان سب چیزوں
Because if they had been given to almost before us, they would have taken out the treasures from this earth.
آپ بولیں گے مسلمانوں تو مسلمان تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اسی میں تو غیر کر رہا ہے
But today we'd say, oh, you know, all the Muslims don't have this, everybody else is doing it.
ہمارے پاس سب چیزوں کا علم ہے لیکن دین کا ہی نہیں ہے سر
He said, you know, we have the ilm of everything else except the ilm of deen.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں حضور کی امت کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے
He said, after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, there's no one else except the Ummat of Nabi Sallallahu
Alaihi Wasallam. نہیں ماننے والا بھی حضور کی امت میں ہیں.
Even those who don't believe in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, they're also the Ummat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
پچھلے نبیوں کی نبوت تو cancel ہو چکی ہے.
Because all the nabuwat of all the prophets went before him has been cancelled.
وہ منسوخ ہے وہ. انہوں بول لے رہے ہیں بول لیں دو.
It's cancelled.
لیکن ہے نہیں وہ کوئی.
But you know, they can say whatever they like, but it's nothing here.
سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے واسطے ہے پچھلے ادیان منسوخ ہو چکے تو دوسرا رہتا کیسا
So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is the last prophet and all the other prophets their you know their way of life has been cancelled so what's left we are the last of the ummah
تو اس لیے اسی وجہ سے حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں امت دعوت امت اجابت آپ کو کتابوں میں مل جائے گا ہر جگہ ملے گا یہ
That's why there's two types of people in this ummah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Those ummah ijabat, you know, those who still need to be who have not accepted Islam and those who have already accepted Islam.
تو اس وجہ سے جو کچھ بھی انسانوں میں اس وقت حاصل ہے مادی اعتبار سے بھی وہ حضور ہی کا فیض ہے
So whatever we see in this world today, even material knowledge is coming from the barakat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
وہ جو معنوی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیے گئے تھے پورے اور وہ جو بات ہے کہ زمین کے خزانے دے دیے گئے تھے ان کی ظہور کے موجبات الگ ہیں ترتیبیں ہیں اس کی اصل میں اس لیے جو اس کو اس ٹائپ پہ ظاہر ہونے کی یہ شکل ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ماننے والے لوگوں سے کیا کام لینے والا ہے
And it's a different thing to see how the knowledge of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is being expressed and presented into this world today. But Umar radiallahu anhu explained this.
Umar radiallahu anhu ka marfooz hai ke is ummat mein huzoor par iman nahi lane walon se duniya ki tarakki ka kaam liya jayega taaki iman walon ke servant bane khidmat kare un.
That's what Umar radiallahu anhu is saying that Allah Subhanahu wa Taala will take the work from the non-Muslims for those who don't believe in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam so that they will serve the ummah the Muslims
kyunki duniya asal to iman walon ke liye banayi gayi
because the world was made for the mu'mins
to isko service iman walon ko dene ka hai
so they're doing their work so they can serve the mu'mins
tum meri ibadat karo mere kaam mein lago tumhare kaam ke waste jo preparation hai na ye karte dusre
he said you will do ibadat you serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala Allah will have others serve you
अगर मैं बात बोलता ये अपनी तरफ से बात बोलता तो आप बोलते कि बात बनाना तो बहुत अच्छा रहा
इसे रिफाइस कर दिस विद ओ या यू
का मुसलमान नहीं कर सक रहा उसको अपने अकाउंट में कैसा डालने की एक रास्ता तरतीब निकाल ले रहे हैं
सो दिस इज अ नाइस वे टू गेट ऑल द अदर वर्क दैट्स डन गुड इन द अकाउंट ऑफ द
मगर ये हजरत उमर का मालफूज है
दिस इज द सेम टू उमर अदला
जिनकी जुबान पर हक बोलता था
दिस इज हु एवर व्हाट ही सेड वाज हक
ये उम्मत के मुल्हमीन में से हैं
ही इज ऑफ दोज हु अल्लाह सुब्हान व तआला गिव इल्हाम यू नो ही गिव
इनकी शान ये है कि लौकान आबादी नबीयन लकान उमर
said about him that if the prophet after Nabi sallallahu alaihi wasallam would have been Umar radhiyallahu
anhu inki shaan ye hai ki jab unki raaye banti thi to Allah pak ki taraf se wahi bhi unke muafiq aa jati thi
and they say about him that if he decided something the wahi would come from Allah subhanahu wa ta'ala yes they would coincide with what had Umar radhiyallahu anhu wanted to do
ye bilkul sahi baat hai
so that's true
to huzur pak sallallahu alaihi wasallam ki barkat se hi جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی ہے اور ان کے جو کمالات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہی کا فیض شمار کیا جاتا ہے
so what we see here today these are all expressions of the barakat of the barakat of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی موسی علیہ السلام کو بھی فرما رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا لنک ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں
That there's a whole wisdom, there's a whole explanation to why Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was expressing the Musa Alayhi Salaam, but that's one of the reasons, is that it's for addressing the Ummah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ये बात फरमा के अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के बारे में ये भी तारुफ करा दे रहे हैं अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिनके बारे में ये लोग तौरात और इंजील में तफसील लिखी हुई पाएंगे.
एंड इन एन इंट्रोडक्शन टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दैट ही दैट अल्लाह द प्रॉफिट हु यू नो एंड यू वाज टॉट अबाउट इन द इंजील एंड द तौरात.
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
He will enjoin them with the good and forbid them from the evil.
ويحل لهم الطيبات.
And he will make enjoin for them those that are good things, the pure things.
ويحرم عليهم الخبائث.
And he will prevent them, he will stop them from doing the bad things.
किसी चीज की अच्छी होने की दलील हुदूस असल्लम का उसको हलाल बताना.
To define something as good is that to that what Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has made halal for us.
और किसी चीज की खबीस और गंदी होने की दलील हुदूस असल्लम का उसको हराम बताना.
And to make anything impure and bad is to define it as something that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has stopped us from doing.
उल्टा सफर नहीं करना है हमको, सीधा सफर करना है.
We should come, you know, our logic should be straightforward. It should come from that way.
उल्टा नहीं होना है वो लोग.
We shouldn't go backwards.
हम लोग ये बोलते हैं कि ये अच्छी चीज है, इसको हलाल होना चाहिए था.
But we think, you know, this is good, so it should be halal.
ये खराब चीज है, ये नहीं होना चाहिए था.
So this is bad, so it should be haram.
कौन है चपिद्दी चपिद्दी का शोरबा?
So who are you to say what's good and bad?
अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि युहिलु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइथ, उनका किसी चीज को हलाल बोलना वो उसके तय्यिब होने की दलील, उनका किसी चीज को हराम बोलना वो उसके खबीस और गंदी होने की दलील.
So Allah Subhanahu wa Ta'ala is saying, in order for something to be defined as good is that which Allah Subhanahu wa Ta'ala is making permissible for us, and something to be defined as bad is that which Allah Subhanahu wa Ta'ala is making impermissible for us.
Wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim,
and he is removing the burdens that are upon them.
ये इंसानियत के अंदर बहुत से रस्म रिवाज ऐसे पनप जाते हैं कि माशरा उस तंगी के अंदर फंस जाता है.
There are many traditions and ways of life that we have enjoined upon us that makes it very hard for people to live their lives.
वो मुराद है इससे.
That's what's referring to, the burdens that are on the people.
आपने जो सकाफत दी, आपने जो तहजीब दी, आपने जो अकदार दिए, आपने जो तौर तरीक़ दिया, वो बड़ों को, छोटों को, अमीरों को, गरीबों को, बाहिज़त लोगों को, बेहिज़त लोगों को, शहरियों को, आबादी, सब लोगों के लिए इंतहाई सुबुक और हल्का और फ्लेक्सिबल है. वो मुराद उलमा किराम फरमाते हैं कि इससे ये मुराद.
So that's what it's referring to here, the tradition and the ways of life and the adab and the etiquette that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taught us for the elders and the youngers and then the rich and the poor, how people can interact with each other, following the teachings of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, that's what it's referring to here. So he's removing the burdens and the shackles that are upon them.
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِأَوْسِ كِبَادَ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ أَسَلْ بَاتْ پِي آگئے.
And that's what Allah SWT is coming to, the real message.
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ,
those who believe on him.
وَعَزَّرُوهُ,
and help him.
عَزَّرُوهُ یہاں پہ معنی عَزَّمُوا ہے,
and honor him.
وَنَصَرُوهُ,
and help him.
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ,
and follow that light which has been revealed upon him.
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, ترجمہ کر دیا اس کا.
And they follow that light which has been revealed upon him.
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ,
those are those who succeed.
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.
He said, look, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told, say, O Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, I have been sent to you, all mankind, to all of you.
وہ جو موسیٰ کو کہا گیا تھا وہ میں ہوں, یہ اعلان کر دیجئے آپ.
So that's what he's introducing himself. So look, that which you were told about to Musa alayhi salam is me. That's what they're referring to.
हम सबको रहमत चाहिए ना, तो मुजीबात रहमत ये बयान की.
So if we all want mercy, these are the means of getting mercy.
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आप पर ईमान मुस्तहकम होना.
So we should have a strong faith in Nabi sallallahu alaihi wasallam.
कि आपकी शख्सियत के अलावा कोई शख्सियत नहीं.
There is no other personality worth following except that of Nabi sallallahu alaihi
wasallam. आपके बात से बड़ा वजन किसी की बात में नहीं.
And no words have more weight than that of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
आपके तरीके से ज्यादा बेहतर तरीका किसी में नहीं.
And no other way of life is better than that of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
आपकी तालीमात से बेहतर तालीमात कोई नहीं है.
Whatever the knowledge is given by him is the best of knowledge.
आपकी सकाफत और तहजीब जो आपने इंसानियत को दी है, उससे बेहतर कोई तहजीब और सकाफत और कल्चर नहीं हो सकता.
And all the etiquettes and knowledge and ways that we've been taught, there's no other way of life better than that. That's what's referring to.
Allah ke rasool hain.
So because he is the messenger of Allah.
Allah ke numainde hain.
He is a representative of Allah.
Is duniya mein Allah ki jagah par hain.
He is in the place of Allah subhanahu wa ta'ala here on this planet.
Allah nahi hai, lekin Allah ki jagah par.
He's not here. Allah is not here, but Nabi sallallahu alaihi wasallam is representing him.
Allah ke bande hain.
He's the slave of Allah.
Aur Allah ke rasool hain.
And he's the messenger of Allah.
Inki baat manna meri manna hai.
So if you follow him, you follow me, Allah subhanahu wa ta'ala.
Inki nahi manna meri nahi manna.
If you don't follow Nabi sallallahu alaihi wasallam, you will not be following, you will disobey Allah subhanahu wa ta'ala.
उनको खिलाना मुझे खिलाना है.
So if you feed him, Nabi sallallahu alaihi wasallam, you're gonna feed me.
उनको पहनाना मुझे पहनाना है.
If you give him something to wear, you give me something to wear.
है ना, क़यामत में अल्लाह तआला को बताना बंदे से कहेंगे ना कि मैं भूखा हो गया था तो मुझे खाने नहीं खिलाया.
Just this hadith, the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will say to people, look, I was hungry, you didn't feed me.
मेरे कुछ ऐसे बंदे थे दुनिया में कि उनके साथ जो मामला करता था मैं उसको अपने साथ ही कंसीडर करता.
You see, don't you know there are a few people on this planet that whatever you do to them, it's as if you did to me.
आप कपड़ों के ऊपर भी सवाल आए थे.
Same thing they do about giving them clothes to wear.
अल्लाह पाक यहाँ तक फरमाएंगे कि मैं बीमार हुआ था मेरी मिजाज कुर्सी भी नहीं करा.
Even to the extent that look, I was sick and you didn't come to visit me.
जवाब में यही कहेगा बंदा.
That's the same response.
अल्लाह पाक भी जवाब में यही फरमाएगा.
That's the same response by Allah subhanahu wa
ta'ala. आम औलिया अल्लाह के बारे में तक ये करने कहने वाले हैं अल्लाह पाक.
So that's referring to the regular friends of Allah subhanahu wa ta'ala.
ये तो इमामुल अंबिया आका नामदार ताजदार मदीना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबु रब्बुल आलमीन की शान है.
So how about that of the final, the last of the prophets, the best representative of mankind, the best of all of mankind? How about him?
इसलिए मेरे दोस्तों, इनके हाथ पर बैठ करना, मेरे हाथ पर बैठ करना, कुराने पाक में.
That's what's in the Quran. If you do bayat on the head of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and if you then bayat on the head of Allah.
إن الذين يبايعونك إنما
يبايعون الله. Those who do bayat on your head, they're doing bayat on the head of Allah.
उसके आगे का जुमला और खतरनाक है.
And the next sentence is more dangerous.
यदुल्लाही फौका अयदीहिम.
The hands of Allah is above their hands.
क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत फरमाते थे तो आपका हाथ ऊपर होता था और बैत लेने वाले का हाथ नीचे होता था, ऐसे होता था.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to take bath, his hands would be on top, and those taking bath would be in the bottom. Be like this.
अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि यदुल्लाही फौका अयदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है.
So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that his hand, Allah's hand, is on the hands of other people.
फिर भी अपने ईमान में गड़बड़ नहीं लाना है.
So we should not have misconceptions about this.
जो अब्दुल्ला है वो अल्लाह नहीं है.
So whoever is the slave of Allah cannot be Allah.
अगर अब्दुल्ला की शान क्या है वो बताई गई है.
But this is to show the honor and the status of this Abdullah.
मेरे नबी पे ईमान रखो.
That to believe in my prophet.
यकीन करो मेरे नबी की बात.
And have firm belief on him.
अजमत दिल के अंदर आए.
And have the greatness in your heart.
मोहब्बत दिल के अंदर.
And love in his heart.
और फिर उसके बारे में फरमाया कि वनसरूहु, और इनकी नुसरत करना.
And then it says to help him.
वत्तबाउ, फिर इनकी इत्तबा करना.
And follow him.
ये दो चीजें अलग-अलग क्यों हैं यहां
पे? Why are these two things separate?
आपकी बात के मानने का, आपकी बात जो आदमी मानेगा, फॉलो करेगा, वो यानी आपके आपके तरीके पर नमाज पढ़ेगा, आपके तरीके पर अपनी शक्ल सूरत रखेगा, आपके तरीके पर खाएगा पिएगा, आपके तरीके पर शादी करेगा, आपके तरीके पर कमाएगा खर्च करेगा, ये तो इत्तबा में आ गया ना.
So I mean, he's just trying to explain. Obviously, he who follows Nabi sallallahu alaihi wasallam is going to dress like him, is going to be like him, eat like him, have his marriage, funerals just like him. So obviously, that's ittiba.
ये नुसरत क्या होती है?
So what is nusrat?
Nusrat ittiba से अलग होती है कुछ.
Nusrat is different than ittiba.
नुसरत होती है हुजूर का जो काम है उसमें शरीक होना.
Mean to be involved in the work of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
नुसरत होती है जो दीन तुम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जिस इत्तेबा को तुम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उस पर उसको दूसरों पर अप्लाई कराना.
Is to that deen which you're implementing upon yourself is to take this and apply this to others.
उसको मुंतकिल करना आगे.
To share this with others.
हां, वना सबहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून.
Those who help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and follow the noor of Nabi sallallahu alaihi wasallam, those are the successful people.
इसलिए मुजीबात ए रहमत है ये.
So these are the means of rahmat.
हम सब रहमत चाहते हैं तो रहमत के मुजीबात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, ये मांगो.
So if we want the mercy of Allah, the Nabi sallallahu alaihi wasallam told us these are the means to get the mercy of Allah.
और अल्लाह पाक ने ये चीज हमें दी.
And Allah has given this to us.
ये असबाब फैला दिए.
And has spread all these means.
तक्वा के असबाब है दुनिया में फैले.
And there's many means of taqwa.
इत्तबा के असबाब है दुनिया में फैले.
Similarly, many means of ittiba.
Nusrat ke asbab hai deen mein.
Many means of nusrat.
Iman ki taqwiyat ke asbab hai duniya mein.
And many means to strengthen our iman.
Allah par iman bhi, Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam par iman bhi.
To believe in Allah and to believe in His Messenger.
उम्मत में उस मेहनत की जरूरत है जिस मेहनत में ये असबाब वजूद में आए.
So there's a need in this ummah to bring these asbab into fruition.
हमारी औलाद पर उस मेहनत की जरूरत है जिसमें ये चीज आए.
So our children need to make an effort on that those means to bring these things into existence.
हमारे दीन की एक्टिविटीज में दीन के नाम की एक्टिविटीज में उन एक्टिविटीज की जरूरत है जिसमें ये चीज क्रिएट हो.
And our religious activities should be such that they bring these things into existence.
मैं इसमें क्या बात कह रहा हूँ जहन यकीनन आपका जहन लिया होगा इस बात को. हम में से बहुत से जितने मस्जिद में होते हैं ना इनका दीन का मिजाज होता है तो ही होते हैं. इसी वजह से दीन के नाम की अपनी एक्टिविटीज में उनके पास बहुत सी चीजें होती
है.
हत्ता कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं पूरी दुनिया की तो उसमें भी हम उसको दीन की ही एक आम बात समझते हैं.
Even sometimes we talk politics from the reference of deen.
दुनिया में होने वाले इंसानों पर मुसलमानों पर खासतौर पर मजालिम और परेशानियां जो आफतें उन पर आई हुई जब उनकी हम बात करते हैं उसको दीनी एक्टिविटीज में हम लेते हैं.
Especially in all the oppressions that are going on in the Muslim world, we talk about this with the intent of deen.
गरीबों को खाना खिला देना, यतीमों को सरपरस्ती कर देना, शादी के जरूरतमंदों में शादी में हाथ बटा देना, ये हमारी दीनी एक्टिविटीज में से.
But to feed the needy, feed the orphans, and to help those in need, to get some poor people married, these are all religious activities.
लोग ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को भी इन चीजों में इन्वॉल्व करके उनको दीनदार बना सकते हैं.
But what people think is that if we involve our children in these activities, they will become religious.
ये गलत फहमी है.
That's a misconception.
यहाँ धोखा खा रहे हैं.
And we're deceived.
दीनी एक्टिविटीज से मुराद सबसे पहले वो होती है जिसमें आदमी के ईमान में तरक्की हो.
And deeni activity is defined as that activity which increases our iman.
ताल्लुक में अल्लाह बढ़े.
Which increases our relation to Allah.
आखिरत की फिक्र पैदा हो.
Fikr for akhirah.
दुनिया की बेसबादी उस पर खुले.
And to relieve the importance of this world.
दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में से निकले.
Take out the love of the world from our hearts.
दुनिया में अल्लाह पाक के दीन के जिंदा होने का जज्बा उसमें आए.
And to have the fikr to bring deen into this world.
अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा उसके अंदर आए.
And to have the fear of staying away from those things Allah SWT has prohibited.
एक ऐसी अल्लाह ताला के लिए जान और माल की कुर्बानी जिंदा हो तबीयत के अंदर कि उसके लिए सब कुछ मर मिट जिंदगी भी उसके लिए मौत भी उसके लिए.
To have this effort such that we give everything for the sake of deen, our time, our effort, our money, everything for the sake of deen.
वो चीजें भी चाहिए लेकिन वो इसके शेड में चाहिए.
Yes, we need these other things but under the shade of these primary activities.
जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज इसके तहत में इस अम्ब्रेला के नीचे होने का है.
All these other activities are secondary under this umbrella of this primary activity.
हम कर क्या रहे मालूम हमारे बच्चों को अगर कोई दीनी एक्टिविटीज दे भी रहे हैं तो ये साया नहीं है उसके ऊपर.
So even if we guide our children to dini activities, we remove this umbrella from their.
उसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे दीन के कामों में हिस्सा लेते हुए भी बेदीन हैं पूरे.
That's why we realize that even though our children are seemingly following deen, but they're in reality away from deen.
उनकी सोच खालिस दुनियावी है.
And their understanding and their mentality is pure dunya.
उनके कल्चर में बेदीनी पसंद है.
And in their culture they have the love for things that are not deen.
सुन्नत की बेइज्जती का मिजाज उनका बन रहा है.
And they ridicule sunnah.
सुन्नत को बेहैसियत समझना उनकी अपनी आदत आसानियां है.
And to make sunnat something very minuscule, something unimportant.
दुनिया वालों के दरमियान अपनी इमेज को कायम रखना उनके पास दीन पर रहने से ज्यादा अहम है.
And to maintain their honor and respect and status in front of those people of the worldly means is more important for them than practicing deen.
उनके खाने पीने का स्टाइल उनकी तर्ज़ ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से मिलता हुआ है.
And their way of life, their dressing and their eating and drinking, they resemble those of the enemies of Islam.
आप बोलेंगे कि इसमें इतना बुरा नहीं है.
So why is that so bad?
ये उस आदमी को समझ में आती है बात जिसको गैरत नहीं मालूम क्या चीज होती
है. He who understands this is he who understands what gairat.
गैरत होता है ना उसको difference नहीं समझ में आता.
Somebody who doesn't have gairat, he won't understand.
इस मुल्क की एक अपनी फौज है.
There is an army of this nation.
इस मुल्क की जिस मुल्क से नहीं बनती उसकी अपनी एक फौज है.
And some other country which this country is fighting, they also have an army.
हमारे इस मुल्क का फौजी दुश्मन मुल्क के फौजी के यूनिफॉर्म पहन के आ गया.
So let's think that an American soldier is wearing the uniform of a non-American
दुश्मन बोलो तालिबान में नहीं
an enemy of Islam is wearing the uniform of an enemy of America.
उसके बाद बोले ये भी तो जिस्म छिपा रहा है
तो जैसे लोग दिस इज कवरिंग माय माय बॉडी
ये भी फौजी लिबास ही है
दिस इज अ यूनिफॉर्म
क्या बोलेंगे
तो व्हाट वुड वी से दैट
मत छोड़ देंगे
जैसे वो सेज वो दे लियो नो
वो बोले कि अबे द यूज तुझे जिंदा ही नहीं रखते हम
दिस इज नो व्हाट
बेगैरती होने की अलामत है
दिस इज दिस इज ए साइन दैट यू डोंट अंडरस्टैंड यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग
नहीं बर्दाश्त किया जाएगा तेरे पास दुश्मन दोस्त की तमीज नहीं है तो तू इंसान नहीं शुमार हो सकता तू हमारे पास रहने के काबिल नहीं
है यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड फॉलो देन यू डोंट डिजर्व टू लिव विद अस
ये मानी जो है वो मुसलमान के ज़हन से निकल जा रहे
एंड दिस डिस्टिंक्शन इज गॉन फ्रॉम द माइंड ऑफ
मुस्लिम्स उसको दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं मालूम
वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेंड एंड फॉलो
अपना और पराए में फर्क नहीं मालूम
फ्रॉम आवर्स एंड नॉट आवर्स
हमारे बच्चों को असल चीज जो गिज़ा मिलनी है सारी उनकी एक्टिविटीज इस असल अम्ब्रेला के नीचे होने की
सो आवर चिल्ड्रन शुड बी फेड विद दोस एक्टिविटीज व्हिच आर यू नो अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ द एफर्ट ऑफ ईमान
हमारी औरतों को जो कुछ मिलना है वो इसके तहत में मिलना है
ऑल व्हाट आवर लेडीज शुड हैव शुड बी अंडर दिस एफर्ट
हमारे मर्दों को मुसलमानों को नौजवानों को बड़ों को वो इसके तहत में होने
चाहिए आवर मेन आवर एल्डर्स आवर यंगस्टर्स शुड ऑल हैव देयर पार्ट दिस एफर्ट
इसलिए हमारी मसरूफियत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होना है कि जिसमें हमारे ईमान को ताजगी मिलते रहे आखिरत की फिक्र जिंदा होती रहे अल्लाह रसूल की अजमत और मोहब्बत बढ़ती रहे उनकी नुसरत का जज्बा आदमी के अंदर आता रहे इस एक्टिविटीज के साथ दूसरी एक्टिविटीज का जोड़े
सो ए मेजर चंक ऑफ आवर टाइम रिलेटिवली शुड बी दोस एक्टिविटीज व्हिच इंक्रीस आवर ईमान व्हिच बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हान व तआला व्हिच स्ट्रेंथन आवर अमल एंड देन एवरीथिंग एल्स कैन बी सेकेंडरी बट द प्राइमरी चंक ऑफ आवर टाइम शुड बी गिवन टू दिस एफर्ट
इस तरीके से मुजीबात रहमत जमा होंगी
दैट्स हाउ यू गेन द मींस ऑफ रहमत
फिर आपका यह कहना कि अल्लाह उम्मीद असलों का मुजीबात रहमत ठीक सही है
देन व्हेन यू मेक दिस दुआ अल्लाह गिव मी द मींस ऑफ रहमत देन इट विल बी करेक्ट
वरना हम जाप के लिए दरख्वास्त दे दिए
Otherwise, you know, we've given the application for a job.
और उसके बाद उन्होंने मंजूर भी कर लिया कि चलो तुमको जॉब दी जा रही है.
And then the other company says yes, we accept you.
उसके बाद बोले मैं नहीं आता.
They said no, I don't want to work.
जब मुजीबाते रहमत तुमने मांगे हमने तुमको मुजीबाते रहमत दी है फिर तुम उस पे नहीं आना चाह रहे भाई ये कौन सी ईमानदारी है यार ईश्वर से दोस्ती है
so I mean you asked for the means I gave you the means and then you refuse the means why is that
इसीलिए मेरे दोस्तों हमें इसका मुजाकरा करना है ताकि हम सब ये जहन बनाए अपना कि नहीं दीन की मेहनत जो है ना ये मुजीबात रहमत में से
दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दिस एफर्ट टू गेन द मींस ऑफ मर्सी
रहमत का सबब दीन दीन का सबब दीन की मेहनत
द सबब द मींस ऑफ मर्सी इज दीन एंड द मींस ऑफ दीन इज द एफर्ट ऑफ दीन
अगर ये दीन की मेहनत होगी तो इंशाल्लाह दीन जिंदा होगा दुनिया और आखिरत दोनों जहान की रहमत अल्लाह पाक को अता फरमाएगा
एंड इफ द एफर्ट ऑफ दीन इज देयर इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव अस सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड लाइफ हियर
और दीन की मेहनत को नुसरत कहा जाता है
एंड द एफर्ट ऑफ दीन इज डिफाइंड एज नुसरत
और अल्लाह ने फरमाया कि तुम नुसरत करोगे मैं तुम्हारी नुसरत करूंगा
एंड अल्लाह सेड दैट इफ यू गिव माय नुसरत आई विल गिव योर नुसरत
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम अल्लाह की तुम मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा
help Allah, Allah will help you.
हम सब जानते हैं कि हमारा अल्लाह हम जिस अल्लाह को जानते हैं उसको किसी मदद की जरूरत
So we know that the Allah that we understand, he doesn't need our help.
वो समद है, वो बेनियाज है.
He is free from all deficiencies.
वो गनी और हमीद है.
He doesn't need anything.
फिर इतना बड़ा जुमला उसने जो कहा है उसका मकसद यही है कि उसके दीन का जो काम है उसकी जो मेहनत है दीन की इसका असर अल्लाह की दूसरी मखलूक पर पड़ता है अल्लाह पाक ने उसको अपनी तरफ मंसूब किया कि उनकी मदद मेरी ही मदद है
That's why Allah said this very important sentence that if you help the deen of Allah, if you help those means which spread khair throughout the world, that's as if you helped me.
क्योंकि मेरी मखलूक को उससे फायदा होगा
because the mahmood of Allah is benefiting
meri mahmood hidayat par aayegi
because the mahmood of Allah will become guided
meri mahmood rehmat ke un mujibat mein dakhil ho jayegi jiske sath maine rehmat joda hai
they will enter into those means which Allah so that's connected with his mercy
इसलिए मेरे दोस्तों दीन की मेहनत का करना भी मुसलमान के जिम्मे इसलिए जरूरी किया गया
दैट्स व्हाई द एफर्ट ऑफ दीन हैज बीन जॉइंड अपॉन द मुस्लिम्स
अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान वाला बनाया इस्लाम वाला बनाया दीनदार बनाया बहुत हद तक लेकिन दीन की जिन जिम्मेदारियों को हमें और समझना है उसमें से इस जिम्मेदारी को खास तौर पर हमें समझना है कि दीन की मेहनत भी मेरे दीन का हिस्सा है यानी दीन की मेहनत भी हिस्सा है और दीन की ये मेहनत भी हिस्सा है जो अभी मैं बता चुका हूँ कि इस मेहनत में और दूसरी मेहनतों में क्या फर्क है उसके अपने असरात क्या हैं
Not just any effort of deen, but this specific effort of deen, because this is a means of all the other efforts.
इस वजह से हम सब अपने प्रोग्राम में इस बात को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारी अपनी दीगर मसरूफियात के साथ दुनियावी और हमारी अपनी दीगर मसरूफियात के साथ दीनी वैसे दीन के काम कर रहे हो आप लोग
हमारी अपनी दीगर मसरूफियात जो दुनिया की हैं वो, हमारी अपनी दीगर मसरूफियात जो दीन की हैं वो, जिसमें हम हिस्सा लेते हैं, उसके साथ साथ दीन की ये मसरूफियत जिसका ताल्लुक दीन का माहौल बनाने से है, जिसका ताल्लुक दीन का मिजाज बनाने से है, इस मेहनत में भी मेरा हिस्सा पड़ेगा।
That's why we need to be involved in this effort of deen, the effort of creating the environment of deen. For we take out time from our other responsibilities, responsibilities of worldly as far as the job and business, but also our responsibilities of deen. We're doing other deen activities, but we need to make this a primary effort in our lives.
और दीन की इस मेहनत के भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत से असबाब बनाए।
And Allah SWT has made many means for this effort of deen.
उसके मौके आते रहते हैं हमारे सामने।
And many opportunities come in our lives.
उसकी शक्लें ऐसी बना दी कि लोगों के लिए आसान हो जाएगा।
And it makes it easy for people to participate.
बताओ ये जिम्मेदारी अगर मुझे बताई जाए और उसके बाद मैं सोचता कि आखिरकार मुझे दीन की नुसरत करना है, बेतलबों में जाके दीन का काम करना है, उनको अल्लाह की तरफ बुलाना है, अगर मेरे लिए एक इंडिविजुअल ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने आया, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ?
So now that we understand this is my individual responsibility, I have to go and talk to those who don't know about deen. I have to go and explain to other people, how can I do that for myself, just one individual?
आपको अकेले को अगर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगा, क्या करोगे, कैसा सोचोगे इस बात को?
Me as one individual was given this responsibility, how can I possibly fulfill that?
इससे बोलो, आज तो मेरी बीवी भी सुनने को तैयार नहीं है, तो दूसरा कौन सुनेगा?
Today we think, my wife doesn't listen to me, how somebody else will listen to me?
मैं अपने औलाद को नहीं बोल सकता हूँ।
I can't tell anything to my own children, who's going to listen to me?
तो फरमाया क़यामत के करीब जो है ना, औलाद अब्बा अम्मा हो जाएगी और अब्बा अम्मा औलाद हो जाएंगे।
Nabi sallallahu alaihi wasallam has given the prophecy that the children will become the parents and the parents will become the children.
Antalid al amatu rabbataha ki tafsir mein likha hua hai.
This is in the tafsir of that hadith, the first hadith in the Malamah.
Antalid al amatu ki baandi apne malik ko janegi ka matlab ye bhi likha hai ki maa baap aulad ko aulad jo hai na wo maa baap ka rutba le legi. Ki aapki kya marzi hai huzur?
This is an explanation of that in first hadith in Bukhari, that when the slave girl will give birth to her master, meaning the parents will listen to their children and they will say, no, whatever the children want, we won't be willing to do.
तो हमेशा ये देखे थे कि बच्चा कुछ भी बोला तो चुप बैठ खामोश बैठ बोलते थे, अब बच्चा बाबा को बोला चुप बैठ खामोश बैठ, थोड़ा नहीं बोल रहा।
So we used to say, the elders, if somebody used to say something, the parents would say, oh, just be quiet. But now the children are telling their parents to be quiet.
ये बोले, अब तुम बूढ़े हो गए, तुम रास्ते में से हटो, कब तक रहते हो?
Now you're an old man, how long you stay? Just get out of the way.
ये सूरत हाल हो गई, तो हम अपनी औलाद को नहीं बोल सक रहे।
So this is the condition today. Today we can't tell our
को नहीं बोल सकते।
We can't tell our brothers and sisters.
अकेले में तो हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है।
And this is the condition of the world today.
हर आदमी अपने अपने जगह बादशाह होता है, अपने घर का, लेकिन ये बादशाह कहीं का नहीं रहा आज।
Today there used to be a time when people were the kings of their houses, but today no one is the king.
Yeah, this means kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi.
This is hadith that all of you are shepherds, all of you be asked about your flocks.
Magar aaj nahi hai wo.
But it's not the case today.
Uske liye Allah Pak ne is ummat ke upar raham farma kar usko ijtemai shakal di.
That's why Allah Subhanahu wa ta'ala had mercy on this ummah and given this collective
shape. Is ko ada karne ke waste tum jamaatein banao.
That's why in order to fulfill this responsibility you make groups.
जमात पे कोई उंगली नहीं उठा सकता।
Because as a group, no one.
मैं अकेला गया तो मुझे बोलेंगे जामिया तेरे को बहुत जानता हूँ, मैं बहुत सुनो तेरे बारे में बोलते।
So if I go as an individual, so I know you, I don't want to listen to you.
मगर जब जमात जाए, जमात आई, जमात मिली, जमात बोलता एक ही आदमी उसमें है, जैसे एक पूरी पार्टी के अंदर जुबानी बोलती है, जो मुतकल्लिम है वही बोलता है, लेकिन निस्बत पूरी जमात की तरफ होती
है। Even though one person is speaking, he's speaking for the whole group, so they can't raise a complaint about the whole group.
और उनका एक असर भी होता है।
And it has an effect.
एक दूसरे को तकवीयत भी होती है।
And it strengthens each other.
और वो जमात में होने से होता ये है कि जिसको कुछ मालूम नहीं है वो भी, जिसको कुछ बोलने नहीं आता वो भी, जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो भी पूरा क्रेडिट लेता है।
And everyone gets a credit in the share. He who knows something, he who doesn't know, they all participate in that credit.
इसलिए अगर मेरी नॉलेज कुछ नहीं है, मैं समझा नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमात में होने का फायदा ये है।
Because even if I don't know anything, as long as we're working together as a team, I get the same reward for the work.
हमने ऐसे असबाब पूरी दुनिया में चला दिया, दीन की मेहनत का इस उम्मत मुस्लिमा की कमजोरी पर रहम फरमाकर कि उसको इज्तिमाई शक्ल दे।
And alhamdulillah, Allah has had mercy on this ummah that has given this effort a collective shape.
अब हमारे लिए बहुत आसान है कि हम जमात में शरीक।
So it's very easy for us to participate in this effort.
अपने इस फर्ज को अदा करने के लिए.
To fulfill that individual responsibility.
ये फर्ज है.
Because it is mandatory.
फर्ज है या नहीं अगर आपको डाउट है तो इसको क्लियर कर सकते हो.
If you're not clear, it needs to be clarified.
और अगर क्लियर हो जाए तो फिर सिर्फ आपको यही देखना है कि इसका सेटअप कैसे काबू में आएगा.
And if it's clear, then you need to think about how can I participate.
इस फर्ज को अदा करने के लिए हमारे लिए जमात में ज्वाइन होना सबसे इजी.
So it's very easy for us, in order to fulfill that responsibility, it's easy for us just to participate.
फायदा भी अजीब गरीब है.
And the benefits are many.
इसमें आसानी भी बहुत अजीब गरीब है.
And it's very easy.
और ये अवेलेबल भी वैसे ही
है. And it's available to everyone.
छोटी से छोटी जमात से लेकर बड़ी बड़ी जमात तक अवेलेबल है.
From small jamaats to big jamaats.
नजदीक के लिए जाना चाह रहे हैं, दूर के लिए जाना चाह रहे हैं, अवेलेबल.
If you want to go close by, you want to go far, many options.
कम खर्च कम टाइम के साथ निकलना चाह रहे हैं, ज्यादा खर्च ज्यादा टाइम के साथ निकलना चाह रहे हैं, अवेलेबल है.
If you have some money or lots of money and more time, small time, you know, lots of time, it's up to you. Many options.
इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अदा करने की, अल्लाह पाक की इस मखलूक तक बात को पहुंचाने की अपॉर्चुनिटी को, इस मौके से फायदा उठाने के वास्ते हमें इस निजाम के साथ में अपने आप को ज्वाइन होने को सोचना है.
So in order to fulfill
that, सोचना है बल्कि तय करना है.
So in order to fulfill that individual responsibility, we have this best of options to participate. So we need to make arrangements of how I can participate in this effort.
खुद फिर इस जमात के अंदर लगने के वास्ते अल्लाह पाक उसके मुजीबात अलग बना के रखते
हैं. And then in order to participate in this effort, Allah has given different things.
ये चैन है पूरा, इसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसा होता है.
It's a whole chain of events.
उसके लिए है कि मौके आते हैं इस्तेमाल.
And one of these things is that there are different opportunities that come different
gathering
times.
होती है.
There are gatherings.
बड़े-बड़े तजुर्बेकार लोग जमा होते हैं.
For elders.
रूहानियत वाले जमा होते हैं.
स्पिरिचुअल पीपल.
दुआओं वाले जमा होते हैं.
पीपल हु मेक दुआस.
कुर्बानियां इकट्ठे करते हैं.
पीपल हु मेक सैक्रिफाइसेस.
रूहानी सलाहियतें इकट्ठे की जाती हैं.
पीपल विद डिफरेंट कैपेसिटीज.
उसकी वजह से एक अंदरूनी रूहानी नूरानी गर्मी मिलती है.
दैट्स व्हाई वी गेट एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनकरेजमेंट.
वो चीज जरिया बनके फिर एक आदमी के अंदर मोमेंटम बिल्ड होता है.
दैट बिकम्स अ मींस फॉर बिकमिंग मोमेंटम इन एन इंडिविजुअल.
वो हिम्मत और शौक पैदा दिलाने वाली चीज होती है.
इट गिव्स अस द मींस, you know, the encouragement to do things.
तो उसके जरिए से आदमी को करना आसान हो जाता है.
And through this makes it easy for someone to.
और इस तरह ये सफर तय होता 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 अल्लाह की रहमत तक पहुंचा देता है.
And through this, you know, through time, inshallah, we get towards the means, the blessings of Allah.
इसलिए ये हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बुजुर्ग लोग और हमारे दरमियान के और मसरूफ और गैर मसरूफ सबसे दरखास्त है मेरे दोस्तों कि इस मुल्क में अल्लाह के दीन को जिंदा करने के वास्ते पूरे मुल्क के अंदर भी, बिरादराने मुल्क के अंदर भी, बेतलब लोगों के अंदर भी, मुसलमान है लेकिन बेतलबी उनमें आ गई है, नमाज रोजे से दूर हो गए उनके अंदर भी, हमारी यूथ के अंदर भी, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर भी, हमारे खानदान के अंदर, हमारी मस्तूरात में, खुद हमारे अपने अंदर, ताकि हमारा मरना जीना अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर आसान हो जाए. हमें ये इरादा करना है कि इंशाअल्लाह मैं इसमें जरूर हिस्सा लूँ.
That's why we should make intention, my dear brothers, for every aspect of this ummah, you know, for the young, for the old, and for the ladies, everyone of this ummah, how we can participate to get this effort involved in each and every aspect of this community, of our ummah.
Sab tayyar hai, inshaAllah.
Everyone ready, inshaAllah?
Ye jazba banaiye ke dunya ke kone-kone mein jaake Allah ki baat sunaye.
You should have this intention to go to every corner of this world.
Ek-ek insaan tak jaake uske dil ko dastak de dunga.
To go and knock on the hearts of every individual.
Agar se main gunahgar hoon, lekin main bolunga ke Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam ki itteba mein kamyab.
Even though I'm a sinner, but I'm just going to say that the success is found in the means of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Agar se main bahut gunahgar hoon, lekin main bolunga ke Allah ki bandagi mein kamal lana
hai. Even though I am a sinner, but I'm just going to tell them that the best success is the following the commandments of Allah.
Uski barkat se mere iman mein takhliyat aa jaye.
And through the barkat of that efforts, Allah will strengthen my own iman.
Allah Pak mujhe bhi ek kamil banda bana de.
May Allah make me a complete
kamil ittiba-e Nabi naseeb farma de.
Is
jazbe ke sath mere dosto hame apni niyatein buland karni
hai. So we need to, with this intention, we need to express our intention.
Himmat aur mujahide ke liye apne aap ko andar se amada karna hai.
Present ourselves with sacrifice.
Aapke upar aap hi faisla hai.
And you are the one who decides your own time.
आपको खुद decide करना है.
You have to decide.
और आप कर सकते हैं.
And you can do it.
इसीलिए अल्लाह ने लगाया है.
That's why Allah has given.
ये काम अल्लाह का है.
Because this is the work of Allah.
और अल्लाह की दी हुई जानो माल में है.
And Allah has given us the time and the money.
जो कुछ है अमानत है.
Whatever we have is an amanat.
बहुत थोड़ा time देके हमें दुनिया में रखा गया.
Allah has given us just a few.
और इसी का इम्तिहान है.
And that's the test.
बस कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम रह जाता है, ये देखा जाता है.
Who will be successful, will be a failure, that's what we'll find out.
थोड़ा सा आदमी हिम्मत कर ले तो इंशाल्लाह ताला बड़ी बड़ी सआदत हमको अल्लाह पाक नसीब फरमाए.
So if you make just a little bit of effort, inshallah, Allah will give us a lot of good.
सब इरादा करते हैं इंशाल्लाह.
इंशाल्लाह.
गुजारिश है कि अभी नाम लिखे जाएंगे तो सब साथी इरादे करो अल्लाह पे भरोसा करो और हिम्मत करो अल्लाह पाक मुझे भी आपको सबको इंशाल्लाह अपन करेगा
तो इंशाल्लाह वो राइट नेम्स वांट यू टू गिव योर नेम्स गिव योर इंटेंशंस टू गो इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह